when he killed Keshi, Sankhachuda and all others, then he came from Vrindavan to this place. This is the place of the father of Yashoda Devi. So Krishna used to live here for so many years. When he was one day playing here nearby, Damasur, a demon of Kansa sent by Kansa, came here and he took the vase of Sakha. Vase means dress. That is not dress. But he takes the disguise himself just like Sakha. He met him as a Sakha. Krishna told him, very good, where you are. Now you should play. Then he began to play hide and search. Some became thief and some became
ram.
He became thief, that demon, Damasu, became thief, and all while became ram. He began to take one by one and used to keep them in that cave. At that time that cave was so deep, so about lakhs and lakhs sakhas he took and placed in them and keep a very heavy stone there on the door. Krishna Das saw and he marked that, where are my friends? Only three friends are here. So where they have gone? At last he thought and saw that this is demon and he has kept all my friends there. Then he, with the help of Baldev Prabhu, he killed the demon and keep that stone from the door and opened the door and he took all his sakhas here. Damasur mane kya? Kya hota hai?
Boom mane aakar.
Aakar.
Aakash mein ghumne wala.
He can, without any form, like zero, can walk everywhere. So he wanted that Krishna should not kill me because I have no state. How Krishna can kill me? But Krishna can kill all the demons in what stage they may. इसलिए यहाँ पर दमासुर का वध का स्थान है. कृष्ण ने यहाँ पर दमासुर का वध किया, उसका निदर्शन अभी भी ये केव है. अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर भोजन थाली में. यहाँ से ये करते करते उनको दोपहर हो गया, बड़ी भूख लगी और भूख लगने के बाद में उन लोगों ने सोचा जैसे पास ही कहीं सरोवर हो तो वहाँ हम खाएंगे. तो सरोवर के पास में अभी हम लोग चल रहे हैं जहाँ पर पत्थरों की थाली बनाई, पत्थरों की कटोरी बनाई और सरोवर को ही उन्होंने अपना पानी लेकर के पान किया. अभी हम लोग चले. जय बोमा सुर गुहा की जय.
बस
हम लोग जहाँ पर उपस्थित हुए हैं, बस जाओ बैठ उधर सामने बैठ. हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ये कामले वन के अंतर्गत में ये भोजन थाली कहलाता है. यहाँ पर हम लोगों ने देखा वो बेमासुर का वध किया और उसी में लग गया. दोपहर हो गया, बहुत विलंब हो गया, लोगों को भूख लग गई, बच्चों को. तो यहाँ पर टीके पर रखे हुए थे जो फल मूल मक्खन मिश्री उनकी मैया ने भेज दिया था, रूटी भेज दिया था, अचार पेटी भेज दिया था, और सबको यहाँ पर उतार करके और चारों तरफ में सब बच्चे बैठ गए। कृष्ण वहाँ पर एक सिंहासन है पासी में, जहाँ पर भोजन थाली थी वहीं पर बना हुआ है सिंहासन जैसा, अभी हम लोगों ने प्रणाम किया वहीं पर बैठ गए और सब सखाओं ने मिल करके वहीं पर भोजन करना आरंभ कर दिया। थाली की जरूरत नहीं पड़ी, थाली और कोटेरी वहाँ पर अपने आप बनी हुई है, कृष्ण के खाने के लिए प्रकृति ने आप खुद ही बना दिया था, इसलिए उसी में रख करके सभी बच्चे ऐसा समझे जो कृष्ण के साथ मैं खा रहा हूँ, ऐसी अद्भुत लीला उन्होंने की। देखने में तो छोटा स्थान मालूम पड़ता है, किंतु तो छोटा स्थान होने पर भी धाम ऐसा है जो देखने में अणु से अणु और विभू से विभू है, जैसे कृष्ण है वो अणु से भी अणियान और विभू से भी विभू है। इसलिए ऐसा मत सोचना जैसे ये सब कल्पनाएं हैं और किसी ने पत्थर ऐसा बना करके रख दिया, यदि होता तो पुराणों में आज से हजारों लाखों वर्ष पहले के पुराणों में, स्कंद पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, दूसरे पुराणों में है, इसके बाद में शंकराचार्य जी आए, मध्वाचार्य जी आए, रामानुजाचार्य जी आए, वल्लभाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु आए, सब लोगों ने ऐसे क्यों कहा यदि ऐसी बात की तो। इसलिए ऐसा नहीं, ये सब पुराणों इत्यादि में सबका ये वर्णन है, ये भोजन थाली है, ये काम में बन है, यहाँ गुहा धर्माशुर का भक्त किया, यहाँ पर सखाओं ने खाया, सभी जितने सखा थे उन्होंने देखा ये हम कृष्ण के साथ में भोजन कर रहे हैं। दूर किसी ने नहीं देखा, जो पीछे बैठे हैं, जो सामने बैठे हैं, जो इधर में अगल बगल में बैठे हैं, सब लोगों ने ऐसा देखा जो कृष्ण हमारे ही सन्मुख बैठ करके और छीना झपटी करके खा रहे हैं। कोई कोई पकौड़ी बना करके घर से ले आए, आलू की पकौड़ी, बैगन की पकौड़ी, कुमड़े की बगौड़ी और अब सब फलों की पकौड़ी बना करके लाए, और किसी सखा ने क्या किया, सुगल सखा ने क्या किया, एक पकौड़ी में से आलू निकाल लिया और उसमें एकदम खूब कड़ी
नीम का पत्ता
लेकर के उसमें ठूस दिया, भर दिया और मधुमंगल के मुख में दे दिया, ये खाओ। वो सोचा जिसे खूब अच्छी होगी, खाया तो देखा तो थुथु करने लगा और गालियां बकने लग गया। इसी तरह से यहाँ पर सब खा रहे थे, लोगों ने खाया। पासी में ये कुंड है, कुंड में उन्होंने भर भर करके पानी पिया। ये काम्य वन है, काम्य वन मैंने क्या, जितनी तरह की कामनाएं होती हैं वो सबको पूर्ण कर देते हैं ये काम्य वन। ये साक्षात बलदेव प्रभु जी हैं। तो काम मने साधारण ये संसारिक मत समझो, संसारिक कामनाएं वासनाएं मत समझो, इसको ये विनष्ट कर देते हैं काम बन। और उसके बदले में गोपी प्रेम रामानम काम तो गोपियों के प्रेम का नाम है काम,
प्रेमी गोप रामानम
प्रेमी कुमे गमत। तो ये गोपियों के प्रेम का नाम काम, ब्रजवासियों के कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, विशेष करके गोपियों का जो प्रेम है, जो देखने में काम जैसा लगता है वो काम है। यहाँ विषयों के प्रति हमारी जैसे प्रीति है, कृष्ण के प्रति वैसे ही प्रेमी हमारी प्रीति होनी चाहिए।
विशेष
यदि अपने लिए
है, यहाँ पर कोईसर लीला का स्थान है,
दिखा तो है बाल्य लीला का, किंतु बाल्य भी है कैशोर का भी,
क्योंकि गोकुल में तो जन्म उधर में ही हो गया, बाल्य लीला
होने से भी उधर से, मैंने गोकुल के बाद में हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद में इधर में आ गए, इसलिए बाल्य लीला का भी है। बाल्य माने पौगंड, पौगंड लीला, पशु गोचारण इत्यादि का यहाँ पर स्थान है, और साथ साथ में किशोर लीला का भी ये स्थान है, उद्गम जब हो रहा है वय संधि का, उस समय का ये लीला का सब स्थान है। यशोदा मैया अपने बच्चे को लेकर के अपने पीहर में आई और यहाँ पर वो सब लीलाएं हो रही हैं, चरण पहाड़ी इत्यादि का ये जो है। और काम्य मन विशेष करके, काम्य मन होता है मनोहर, मनोहर मैंने क्या, कृष्ण की मनोहर लीलाएं यहाँ पर हुई, कृष्ण की कामना को गोपियों ने पूरा किया और कोई विश्व में नहीं कर सकता है, सखा भी पूरा नहीं पूरा कर सकते हैं, यशोदा मैया भी पूरा नहीं कर सकती, और दास लोगों की और सखा की तो बात ही क्या, कुछ कुछ रह जाएगा, पूरा करेंगे कुछ कुछ, किंतु कुछ कामनाएं कृष्ण की रह जाएंगी। गोपियां उनकी इस कामना को जहां पर पूर्ण करती है वो है काम्य वन। इसलिए काम्य वन बहुत ही मनोहर और सब प्रकार से ये वन है, अच्छा सुंदर वन, इसमें सब प्रकार की लीलाएं हुई है। पगंड से लेकर के किशोर इत्यादि की जितनी भी लीलाएं हैं, ये गोचारण के बहाने ऐसे ऐसे दुर्गम स्थानों में आते और मिलते। चरण पहाड़ी को मत समझना ये केवल सख्त रस का वहां है, सखाओं को छोड़कर के चरण पहाड़ी पर चढ़ गए। मैं तो नहीं जा सकूंगा इसलिए वहां की कथा बोल देता हूँ। चरण पहाड़ी, चरण पहाड़ी मैंने क्या, चरण पहाड़ी ये है कि सखाओं के साथ में खेल रहे थे कहीं इधर उधर में, और झट से उनको मालूम नहीं होने दिया और वहां से सखाओं को खाने पीने और दूसरे काम में लगा दिया, और केवल मात्र सुबल को साथ ले लिया या मधुमंगल को साथ ले लिया और उनको भी छोड़ दिया नीचे, और ऊपर चरण पहाड़ी पर पहुंच गए, वहीं से बंसी बाजन की और वहीं पर सब पत्थर एकदम पिघल गया। गोपियां भी वहां पर आ गईं। वो चरण पहाड़ी क्या है, नदस सदा उपधार्य मुकुंद गीता मनोभाव भक्न देगा, आलिंगन स्थगित उर्मुरारे घृणंति पाद जुगलम यमुना नदी काम के वेग को रोक न सकी, और उनके चरणों में अपने प्रेम को अपने कमल के फूलों के बहाने हाथों में लेकर के और कृष्ण के चरणों में उपहार दे रही है, मानो अपना हृदय कमल उपहार दे रही है उनके चरणों। कृष्ण ने मानो ग्रहण नहीं किया, पहले से एकदम बस तत्थल तक चढ़ गई, ऊपर भर गया यहाँ तक, किंतु कृष्ण आत्मा राम जैसे पड़े रहे, तो जमुना जी लज्जित हो गई और उनके चरणों में पहुंचे और चरणों में उपहार देने लगे। मनोभव भग्न बेगा, वहां पर
मन के
मन का जो भाव माने काम
मन के काम
ये सब चीजें भग्न हो गया। भग्न मैने क्या, भग्न मैने जमुना की धारा रुक गई, इतना काम हुआ कि चलना भूल गई और नीचे का पानी भी ऊपर में आने लगा, ऊपर का पानी यहाँ आने लगा, आवर्त के रूप में दिखने लगा और अपने काम को कृष्ण के चरणों में अर्पित कर। ये चरण कमल चरण पहाड़ी के ऊपर में है, साधारण नहीं। कौन सा चरण कमल, बरहा पीड़म नटवर बपू कर नौमिधते अप्रभुसे तड़िदम्बराय गुंजावतंत परिपुच्छल लखनाय वन्यस्तजे कौलवेत्रपितानु लक्ष्मये मिधुपदे। वो चरण कमल चलते हैं पृथ्वी पर। आज पृथ्वी का कौन सा सौभाग्य है, बराह बपू से नहीं,
राम बपू से भी नहीं,
बराबर से मैंने बड़ा होकर के जो पृथ्वी को अपने दांत पर धारण किया और पृथ्वी ने उनके चरणों को स्पर्श किया नहीं, रामचंद्र जी बन बन में डोले बिना पादुका के, इसलिए पृथ्वी जी आज पुलकित हो रही है,
बामन देव के लिए भी नहीं।
बामन देव जी तीन पगों से पृथ्वी को माप लिए और अपने चरण अंकित कर दिए, ब्रह्मा जी ने उसको धोया, आज पृथ्वी उसके चरण को पा करके आज बड़ी पुलकित हो रही नहीं, इसलिए पुलकित हो रही है, इसलिए पुलकित रही है आज पृथ्वी जी। ये पृथ्वी पर कृष्ण के सुकोमल चरण पड़ रहे हैं आज कृष्ण के रूप में। और कौन सा चरण कमल, सत्य सुजात चरणाम्बरुहम तनेषु भीता
प्रणीतेषु
कृपादाय। गोपियां बड़े प्रेम से डरते डरते उनके चरण कमलों पर अपने हृदय में रखती हैं। आज इस चरण से ये बनबन में ये कामबन में देख रहे हैं चारों तरफ में पहाड़ी कंकड़ कांटा फूस चल रहे हैं। गोपियां उन चरणों को अपने हृदय में वहां पर रखा, कहां चरण चढ़ने पर, और वहां पर रखने से ही राधा जी के साथ में होने के साथ साथ में वो पत्थर पिघल गया, कृष्ण का हृदय पिघल गया और हृदय पिघलने से सब कुछ पिघल गया और पिघलने के साथ साथ में पहाड़ी भी पिघल गई, बस उनके चरण अंकित हो गए। ये चरण कमल है वहाँ, और भी बहुत से दिखे गए हैं चरण कमल के, लीला स्वयंवर श्री, वो चरण कमल जिनको राधा जी अपने कोटि कोटि प्राणों से निमंत्रण करती हैं, वो चरण कमल ब्रह्माचारी ध्यान धरते हैं, वो चरण कमल नहीं शंकर जी वो धरते हैं। जब ब्रह्म रुद्र सुखनारद विश्वमुखी श्रद्धावती कर्ण चूर्णम अनंत शक्ति संग्राधिका चरण रेणु मनस्करा। अभी तक तो कृष्ण की चरण रेणु की बात कहा, ऐसे जो कृष्ण है वो जिसके चरण रेणु से स्मरण करने मात्र से वो कृष्ण जो देवताओं के लिए भी ब्रह्म इत्यादि के लिए अगम्य है अगोचर है, उनके चरण उनके चरण कमल उनके हृदय में ध्यान में नहीं आते। और राधिका जी का स्मरण करते ही राधिका जी के चरण कमल की धूली कणा का स्मरण यदि कोई करे कृष्ण अपने आप बच, ऐसे चरण कमल का आप लोग वहाँ पर दर्शन करें। साधारण सखरस में ही मत समझेंगे, ये सखरस ये काम्य बन केवल सखरस का या दासरस का अथवा ये सखरस इत्यादि का ही नहीं है, काम्य मने अंतिम काम समझो, ये काम्य बन में ये पूरा होगा। इसलिए वहाँ के वृंदावन के गोपीश्वर महादेव वहाँ पर कामेश्वर महादेव बन करके बैठ गए। कामेश्वर मैंने क्या है, वही काम समझो, ये जागतिक काम मत समझो। जागत के लोगों को धतूरा दे देते हैं, धतूरा समझते हैं ना, इस आदमी
पागल हो जाता है,
पागल होकर के या मर जाता है। ये बीच ऐसे ही है, इस बीच में हम लोगों को नहीं जाना है। हम गोपेश्वर से वो काम की अभिलाषा करते हैं जो अपने हृदय में वो कामना करते हैं, पाया है कि नहीं पाया है कोई पता नहीं। नारद जी जिस काम को नहीं पाते हैं, एक काम बन में हम इसलिए आए हैं कि वो कामना पूर्ति हो जिस कामना के द्वारा राधिका जी गोपियां सब कृष्ण को संतुष्ट कर देती हैं, कृष्ण तृप्त हो जाते हैं, जिस वहां पर हम लोग आए हैं। आप लोग यहां पर कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करें, राधा जी के चरण कमलों की विशेष वंदना करें, और वंदना करके आप लोगों की कामना यदि ऐसी हो कि पूर्ति हो, बस यही कह सकते हैं। मैं वक्तव्य समाप्त करता हूँ, यहाँ पर जो कुछ भोग लगा है सब लोगों को थोड़ा सा दो चार आदमी मिल करके बांट और बाकी उन्होंने वृंदावन में काली दा के पास में वो भजन करते थे। वृंदावन में लिखा हो, यहाँ पर भी लिखा हो सकता है, और पासी में 84 कुंड है, 84 तीर्थ है, 84 मंदिर है, और विशेष करके हस्तिनापुर से इसका संबंध है। हस्तिनापुर यहाँ से पड़ता है बीच में खंडोवन, पड़ता है इसी के पास दिल्ली और यहाँ के बीच में खंडोवन, वहीं पर दहन करके अग्नि को तृप्त करके अग्नि से बर दिया था, तीर धनुष जो अक्षर तीर और धनुष उन्होंने पांडवों के स्थान है वहाँ पर हम बतलाएंगे पांडवों का स्थान, विमल कुंड के पास में, और वहाँ पांचों पांडवों का स्थान है वहाँ पर। यहाँ पर यशोदा मैया का पीहर है, वहीं पर स्थित पांड रामेश्वर है, और वहीं पर कदम्ब खंडी है, कदम्ब खंडी यहाँ से बरसाने के बीच में है उधर से, वहाँ पर हम इस बार नहीं जाएंगे। वहीं पर सुनहरा गाँव है, राधा जी ने अपना हार शंकर जी को पहना दिया अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए लौकिक रीति के अनुसार।
जिस कामना से कहा वो तो पूर्ण
होगी, पूर्ण होगा नहीं,
क्या शंकर जी को हार पहनाया, माँ जी पूर्ण कैसे हुई?
इसलिए नर लीला में ऐसा है, उसे प्रार्थना करो, वो तो शंकर को ही बात देने वाली है। और ब्रह्मचारी जी ने भी बतलाया जितनी प्रकार की कामनाएं हैं वो कृष्ण यहाँ आने से काम्य बन में अपने आप पूरी हो जाती है। कैसे पूरी हो जाती है, रहेगा ना बांस न बजेगी बांसुरी। सब कामनाओं को उखाड़ करके फेंक देते हैं और केवल मात्र एक भक्ति की कामना रखते हैं, इसलिए ये काम्यवन है। जो कोई कामना लेकर के भी आए उन कामनाओं को हटा देना चाहिए। अन्न अभिलाषता सन्नम ज्ञान का माध्यना प्रथम, तब ये भक्ति होगी। इसलिए ये काम्यवन है। काम्यवन माने भक्ति की कामना। भक्ति की कामना पांच रसों में ही होती है, किंतु पांच रसों में कामना जो है कृष्ण की पूरी नहीं होती। जो कामना दास वाले नहीं पूरा कर सकते, सख्य वाले पूरा नहीं कर सकते, वात्सल्य वाला नहीं हो सकता है पूरा, वो कामना पूरा होती है कहाँ? कृष्ण की कामना कौन पूरा वो पूर्ण करता है? गोपियां एकमात्र करती है। गोपियों में भी सभी मिल करके भी वो चाहे तो कृष्ण की पूरी कामना नहीं होगी, कुछ हद तक होगी, केवल एक कामना जिसके द्वारा वो आराधित होती है। अने आराधितो नून भगवान हरिश्वर है। एकमात्र एक गोपी है श्रीमती राधिका जी, जो कृष्ण की संपूर्ण कामनाओं को संपूर्ण रूप से पूरी करती है। भाई राधिका जी कोटि कोटि रूपी में अपने कार्यों से गोपियां हुई हैं, कुछ साधन सिद्धा भी हैं, किंतु वो जो गोपियां हैं वही कृष्ण की कामना को पूर्ण करते हैं, इसलिए ये काम्यवन है। काम माने मनोहर भी होता है। कृष्ण मनोहर हैं, गोपियां मनोहरा हैं। यहाँ पर जितने भी क्षेत्र हम लोग गए, चरण पहाड़ी का भी हमने कहा, लुकलुकी भी कहा, यद्यपि कृष्ण लुकलुकी में वो कृष्ण वहां पर छिपते हैं, किंतु वो यथार्थ में वो है क्या? लुकलुकी कुंदर। यहाँ पर राधा जी छिप जाती हैं और कृष्ण खोजते हैं। किस लिए खोजते हैं? उनकी कामना पूर्ण नहीं हुई। कामना क्या है? कृष्ण को ही सब मूल रूप से प्रसन्न किया जाए, कृष्ण की जिसमें प्रीति हो। और कामनाएं जो है वो काम है, किंतु गोपियों का काम प्रेम है, यही समस्त शास्त्रों में वर्णन किया गया। हम लोग काम वन में आए हैं, जबकि कृष्ण की लीला समाप्त हो गई उसके 5000 वर्ष के बाद में, आज से 500-700 वर्ष पहले, 500 वर्ष नहीं बल्कि 300 वर्ष पहले मुगलों के राज्य में यहाँ की समस्त वृंदावन की जो शिव विग्रह थे वो सब यहाँ से हट गए, चले गए। क्यों? इसलिए कि पुजारी लोग ठाकुर जी की ठीक से सेवा नहीं कर सके, इसलिए उनकी सेवा नहीं ग्रहण की। उसके मालिक बन गए और उसके प्रणामी इत्यादि को अपने भोगों में लगाने लगे। सेवा की भावना रहने से वो नहीं जाते। तो यहाँ पर समस्त विग्रह वो हुआ था, शिवाजी के साथ में औरंगजेब का विवाद हुआ था। शिवाजी मिठाई बांटने के बहाने से दिल्ली के जेलखाने से निकल करके भागे। अब उसमें सहयोग था जयपुर का नरेश का, बस जयपुर का नरेश से वो बिगड़ गया और उनका चिन्ह वृंदावन में समाप्त करने के लिए विशेष करके जयपुर नरेश के द्वारा जो प्रतिष्ठित विग्रह थे उन्हीं को ही उसने तंग किया, उन्हीं को तोड़वाया और दूसरे मंदिर को नहीं तोड़वाया। गोविंद जी, गोपीनाथ, मदन मोहन, श्याम सुंदर, राधा दामोदर इत्यादि का सब मूर्तियों को लेकर के वहां से पहले पड़ाव में राधा कुंड आए, दूसरे पड़ाव में यहाँ आए, फिर धीरे 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 चले गए जयपुर की तरफ। फिर जयपुर में सब विग्रहों की प्रतिष्ठा हुई, किंतु मदन मोहन जी को उन्होंने जौतुक के रूप उपहार के रूप में अपनी लड़की को दे दिया, उसको लेकर के वो
करौली
में लेकर के उन्होंने स्थापन किया, आज भी वहां पर वो है। यहाँ पर जब आए सब विग्रहों को लेकर के आए तो राधा जी तो आई ही नहीं, वो वृंदावन को छोड़ करके नहीं गई। यहाँ तक वृंदा जी आई किसी तरह से, किंतु ये सीमा है, छोड़ करके आगे बढ़ने के लिए तैयार है। कृष्ण भले ही छूट जाए किंतु राधा जी नहीं छूटेंगी। रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे ही प्रार्थना करते हैं, आशा भई अमृत सिंध मय कथनचित मया कालो मया गमिता क्लेशाम प्रतम ही संचेत कृपा मई विधा सी नई वकिन में प्राणो भजेना बरो रूपकारी नाम। मुझे वृंदावन से भी कोई जरूरत नहीं है। हे श्रीमती राधिके, यदि आपकी कृपा नहीं हुई तो मुझे वृंदावन से जरूरत नहीं है, राधा कुंड से भी जरूरत नहीं है, गिरिराज से भी जरूरत नहीं है, और को तो क्या कहूं। हमको श्याम सुंदर से भी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपके चरण कमलों को नहीं छोड़ सकता, ये रघुनाथ दास को स्वामी जी पर। ऐसे ये वृंदा देवी, वृंदा देवी का ही बनाया हुआ ये वन है। उन्होंने अपने वन को श्रीमती राधिका के चरणों में अर्पित कर दिया और उन्हीं को वृंदावनेश्वरी बना दिया। ये वृंदा जी ही मूल है, कृष्ण की सखी है और राधा कृष्ण में मिलाने वाली ये हैं। कभी दूती भी बनती हैं, कभी सखी का भी काम करती हैं, कभी और कुछ करती हैं। साथ ही साथ में तुलसी जी उनके प्रकाश हैं। ये जो वृक्ष के रूप में देखते हैं, जिनका संबंध ब्रह्म वैवर्त के पुराण के अनुसार में जो देखा जाता है शंखचूड़ इत्यादि के संबंध का, वो सब उनकी छाया है। तुलसी जी की वसल नहीं है, उनकी छाया, जैसे राधा जी की छाया दुर्गा जी हैं, काया राधिका जी हैं, उसी तरह से वृंदा जी की प्रकाश विग्रह है तुलसी, और तुलसी जी की छाया वो है, वो तुलसी जो संगसूर से विवाह इत्यादि का प्रसंग आता है। उस गोलोक वृंदावन में कोई साप का और तामसिक भाव का वहां पर प्रवेश नहीं है। इसलिए जब कृष्ण जी के समस्त विग्रह यहाँ जब आए, यहाँ से जब जाने लगे जयपुर में, तो यहीं पर वो रह गई वृंदा। तो यहीं पर वृंदा जी सभी से प्रतीक्षा कर रही हैं जब कृष्ण आएंगे जाए। हम लोगों ने क्या किया, जब वृंदावन में तो अलक्षित रूप में थी, तो हमने देखा तो मैं 3-4 वर्ष पहले वृंदा जी की आराधना की, जब आप पधारिए तो हमने वृंदावन में सेवा कुंज में वृंदा जी को पुनः वहां पर सेवा कुंज में हमने पधरा दिया है। वृंदावन में वही एक मंदिर है जहां पर कि वृंदा जी का मंदिर है, जैसे यहां पर एक ही मंदिर है जहां पर गोविंद जी के साथ में ये वृंदा जी है। ये वृंदा देवी का ही मंदिर कहलाता है। आप लोग तो देख रहे हैं ये कैसी इसकी भग्न अवस्था हो गई है। पहले एक समय में ये कैसा होगा, इसका विशाल वैभव होगा। अब ये काम कामवन भी टूटा फूटा लगता है। जब मदन मोहन के तरफ हम जाएंगे और सब देखेंगे, केवल टीले कंकड़ और ये सब भरे पड़े हैं, पुराना स्थान हो गया। पहले बिजनेस का भी सेंटर था और राजस्थान का एक प्रसिद्ध नगर ये था, वाणिज्य का भी था और सब प्रकार से भक्ति का लोग, भक्त लोग सब आते थे। बल्लभाचार्य भी जिस समय आए थे उस समय तक समृद्ध था। इसके बाद में धीरे 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 ये सब चला गया, धीरे धीरे इसका वैभव सब नष्ट हो गया। जैसे भी हमको तो वैभव देखना है, वैभव तो सब समय वही है, ये दृश्यमान प्रकाश है। और एक होता है
अप्रकट प्रकाश,
अप्रकट नित्य प्रकाश, और एक होता है प्रकट प्रकाश, अभी दृश्यमान प्रकाश। प्रकट प्रकाश में कृष्ण आते हैं जब, तो वो प्रकट प्रकाश है। जब सब समय अपने नित्य धाम में रहते हैं तो अप्रकट प्रकाश अभी दिखता नहीं, और अभी जो दिख रहा है दृश्यमान है, इसमें कुछ भी नहीं देखता। टूटा फूटा ऐसे भग्नावशेष, टिल्ले फिल्ले यही सब दिखते हैं, बाल मोजा रूखा चूखा। किंतु हाँ, यहाँ पर वही प्रज है जिनके प्रेम का नेत्र है, वो प्रेम नेत्रों से ये सब देख सकता है। अभी हम लोग गोविंद जी को, वृंदा जी को, सबको हम लोग प्रणाम करेंगे। अभी यहाँ पर मदन मोहन जी का मंदिर है, जरा बहुत दूर है। गोपीनाथ का भी 1-1.5 मील के करीब है। 84 खंभा है, इसके अतिरिक्त करीब करीब 84 तीर्थ स्थान, 84 कुंड, 84 विग्रह मंदिर इत्यादि सब बहुत कुछ है। बहुत विशाल जगहों में ये सब बना हुआ था। हमारे गोस्वामी लोग भी यहाँ आकर के भजन करते थे और यहाँ पर सिद्ध प्राप्त होते थे। अब हम लोग यहाँ से विमल कुंड में चलेंगे, वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा प्रसाद साथ पहले स्नान करेंगे, जो जिसको स्नान करना होगा आचमन करेंगे, दर्शन करके वहाँ की हरी कथा बोल करके, तब थोड़ा सा प्रसाद पा करके विश्राम करेंगे और ब्रह्मचारी लोग यदि दौड़ सकते हैं तो इसी बीच में जा करके लंका पार करके आएंगे बंदरों की, और हम लोग वहाँ पर रहेंगे। इसके बाद में सेतु बांध रामेश्वर वहीं पर पासी में पड़ेगा, जाते समय में यशोदा जी का यहाँ पड़ेगा, पासी में गया कुंड पड़ेगा, और भी हजारों कुंड तंद सब यहाँ पर है। और जाते तब हम जब चलेंगे यहाँ से नंदगांव की तरफ में, तो चलते समय कामेश्वर जी का वहाँ पर दर्शन करके और फिर हम लोग नंदगांव की तरफ में चले गए, वहाँ पर चरण पहाड़ी का दर्शन करेंगे। और यदि समय मिल गया, यदि एक घंटा का भी, तो रूप गोस्वामी का भजन स्थली का हम लोग दर्शन हम तथा कर लेंगे। हम है मधुरे न देवी का कमे मन होता है मनोहर, सबसे सुंदर बनो है, ये बहुत सुंदर बन है। इसमें 84 तीर्थ हैं, 84 कुंड हैं, 84 सब देवता लोग हैं। ऐसी यहाँ की धूलि कणा सभी पवित्र है। तो हमने चरण पहाड़ी में और सब जगहों में बतलाया, यहाँ की विशेष ये कथा है। ये विमल कुंड है, भारतवर्ष के पश्चिम में सिंधु देश है, अब वहाँ पर हो गया है पाकिस्तान। पहले वो हमारे पंच नदियों का वो प्रदेश था, वहाँ के घोड़े बड़े सुंदर होते थे, यज्ञस्थलियाँ वहाँ पर रहती थी। वहाँ का एक राजा था, उसका नाम था बिमल, बहुत ही प्रतापी राजा था। उसके घर में कम से कम तो 5000 स्त्रियां उसकी थी, विवाह किया था, किंतु किसी को एक लड़का पैदा नहीं हुआ, केवल लड़कियां ही लड़की पैदा हुई, सब मिलाकर के 16000 उसकी लड़कियां थी। ये लड़कियां कौन थी? स्कंद पुराण के अनुसार में ये अयोध्या में जो 60000 ऋषि लोग थे, ये लोग कृष्ण की उपासना करते थे पति के रूप में पाने के लिए। अयोध्या में भी कुछ राजकुमारियां थी, सीता जी की सहेलियां, वो रामचंद्र जी को रूप को देकर के उन्होंने देखा कि सीता जी से इसके शादी हो गई और हमारी शादी तो हुई नहीं, किंतु मन ही मन राम जी को संकल्प किया ये हमारे पति रहेंगे। तो राम ने उनको कहा, इस जन्म में हम सीता के अतिरिक्त और किसी को बाह्य रूप में हम अपनी पत्नी नहीं बनाएंगे, कृष्ण लीला में जब हम आएंगे, कृष्ण का अवतार लेंगे, उस समय में तुम लोग वहां पर सिंधु राजा के घर में तुम लोग पैदा होगी, और वो राजा आकर के हमारे के साथ में तुम्हारी वो सबका गांधर्व विवाह कराएगा। इसलिए जो माया ने उनका जन्म दिया सिंधु राजा के कन्याओं के रूप में, 16000 कन्याएं थी। वो राजा महाभारत के पहले अपने सुंदर सुंदर कन्याओं के लिए वर खोज रहा था। नारद जी ने उनको कहा, यदि शादी करनी है तो तुम मथुरा चले जाओ, वहां पर कृष्ण है, उनकी शादी करो। वो यहाँ आया तो देखा कि कृष्ण तो वहां नहीं है, वो ब्रज में चले आए थे। उसी समय में शांतनु कुंड आप लोगों ने देखा होगा, ततोहा मथुरा के पास में, वहां पर भीष्म पितामह जी आए थे, संतनु उनके पिता लगते हैं, अपने पिता के पास में आए थे। उसे उस राजा की भेंट हुई, राजा उनको जानता था। उन्होंने कहा कि मैं किसके साथ अपनी लड़की की शादी दूं और कैसे दूं? उन्होंने कहा कि कृष्ण से ही शादी दे दो। तो फिर वो घूमते घामते घामते उस समय कृष्ण कामे वन में थे, कृष्ण का मामा का घर भी यही है पासी में, वो सेतुबंध रामेश्वर के पास में पड़ता है। कोई और भी कई जगह बात लाते हैं तो वो भी संभव है, क्योंकि वो लोग तो डेरा डाल करके इधर उधर रहते थे, जैसे नंद बाबा यहाँ पर रहते थे, वहाँ गोकुल में रहते थे, नंदगांव में रहते थे, यहाँ रहते थे, शक्तिकरा में रहते थे, बहुत से जगह में रहते थे, ऐसे ये लोग घुमा करते थे। तो यहाँ तो कृष्ण से उनकी भेंट हुई, कृष्ण को देख करके उन्होंने प्रतिज्ञा की, जैसे हम इसी के साथ में अपनी लड़कियों की शादी देंगे। उसी समय उन्होंने अपनी लड़कियों की गांधर्व विवाह से शादी की। कृष्ण वैसे राजी नहीं हुए उनको ग्रहण करने के लिए, क्योंकि उनका उपनयन भी नहीं हुआ था, इसलिए उनको गांधर्व विवाह से उन्होंने ग्रहण किया। राजा की मुराद पूरी हुई। उन्होंने पर मांगा कि मैं अब इसको ब्रज को छोड़कर के नहीं जाऊंगा। उन्होंने देखा कृष्ण ने जैसे यही पर रहे, इसलिए उन्होंने कह दिया कि तुम विमल कुंड के रूप में यहीं पर रहेगा, तुम पवित्र रहेगा, तुम्हारा जो स्नान करेगा जल में आचमन करेगा स्पर्श करेगा सबका सदा निर्मल हो जाएगा, उसमें विमल भक्ति उसमें प्रवेश करेगी। और उनको प्रकारांतर से लेकर के द्वारका में भेज दिया योगमाया के प्रभाव से। वही पीछे से महिषियां हुई, इसका भी संबंध कुछ कुछ लगता है, नहीं तो कल्प भेद हरि कथा सुहावा, कल्प के भेद से ऐसा संभव है, कोई भी असंभव चीज नहीं है जो माया के द्वारा। तो इस तरह से वहां ये विमल कुंड हुआ। विमल कुंड में स्नान करने से भगवत भक्ति होती है, प्रेम होता है। यहां पर पांडव लोग रहते थे, उन लोगों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास था। अज्ञातवास तो उन्होंने विराट में उन्होंने किया। विराट कहाँ पर है? कोई कहते हैं नेपाल के पास है, कोई कहते हैं मध्य प्रदेश में, अलवर से आगे पहाड़ में है ना, तो उसी को विराट नगर कहते हैं। और कोई कोई कहते हैं कि नहीं,
स्वराज खम्बा कोई बताते
हैं,
स्वराज खम्बा कोई, स्वराज जी खम्बा काशी के हो।
तो वहां पर विराट नगर में उन्होंने अज्ञात वास किया था, किंतु उसका अधिकांश समय 12 वर्ष में घूम फिर करके आप करके यहीं पर रहते थे। पासी में जब यहाँ पर आ रहे थे, हिडिम्बा नामक एक राक्षसी बहुत अपना रूप सुंदर बनाया और भीम के रूप पर आसक्त हो गई। भीम के पास में आई, मैं आपसे शादी करनी चाहती हूँ। तो वो बड़े लज्जित हो गए। मैं कहा जब मैं नहीं जानता, कुंती मैया के पास में जाओ। तो कुंती मैया के पास में वेश बदल करके गई, सुंदर परम किशोरी बन करके, और हाथ जोड़ करके उनके चरणों की बहुत सेवा की। तो उन्होंने प्रसन्न होकर अच्छा जाओ तुम शादी कर। जब भीम के पास में देखा तो उसका भाई वहां पर भेजा था ढूंढने के लिए कहां से खाद्य मिलेगा, मनुष्य मिल जाए तो उनको खाएंगे। अरे अरे मेरी तू बहन होकर के मनुष्य से प्रेम कर रही है, अभी तुमको भी मारता हूँ, उस आदमी को भी मारता हूँ। तो मारने के लिए दौड़ी तो भीम ने उसे बीच में उसे मार डाला। और फिर उसे शादी उसी के पुत्र घटोत्कच था, जो महाभारत युद्ध में बहुत ही पांडवों का पक्ष लेकर के समर किया था। और घटोत्कच का पुत्र एक और था बर्बरी, वो और भी प्रताप थी। वो तो भीष्म द्रोण कर्ण अर्जुन सबको पछाड़ दिया। वो चाहता था एक मिनट में सबको मार जाता, इसलिए कृष्ण ने उसको चक्र सुदर्शन से काट लिया। तो उसने कहा भाई महाभारत युद्ध में हमको रहने दो देखने के लिए, देख लिया पर उसको रख दिया। हाँ हाँ, तो इस तरह से मैंने कृष्ण ने पूछा जा भाई महाभारत युद्ध में ये किसको सबसे वीरता का कौन काम किया? अर्जुन ने कहा कि मैं सबसे बड़ा काम किया, मैं नहीं जाता तो महाभारत युद्ध ये पांडव लोग नहीं जीते। भीम ने कहा जा बात अधिक मत करो, मैं सबसे वीर हूँ। युधिष्ठिर ने कहा कि हमारे धर्म के प्रभाव से ये जीत होने पर जीत नहीं होती। जब सभी लोग कहने लगे तो कृष्ण का जय जरा ठहरो, इससे पूछो तो बर्बरीक से। तो वहीं से बोलो जी हमने देखा जैसे कोई भी वीर नहीं है, केवल कृष्ण ही लड़ रहा है, इस पक्ष से उस पक्ष से वो कृष्ण ही एकमात्र देखा, और कृष्ण ही नहीं युद्ध किया और कृष्ण ने नहीं जय किया, सबका भी मन दूर कर दिया। तो यहाँ पर एक और भी बातें हैं। यहाँ पर जब पांडव लोग थे, साथ साथ में द्रौपदी भी थी। दुर्योधन ने एक बार दुर्गाचार्य जी को बहुत प्रसन्न किया, और प्रसन्न करके उनसे कहा जी प्रभु एक बात हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए। उन्होंने कहिए आप यही यहाँ पर जितने 60,000 ऋषियों का जो मैंने सम्मान किया है आप इसमें विमल कुंड पर जाइए, वहाँ पर महाराज युधिष्ठिर अर्जुन भीम नकुल सहदेव और द्रौपदी वहाँ हैं, बड़ी अभ्यागत करती हैं और सब संतों को बड़ी सेवा करती हैं लोगों की, आप वहाँ पर पधार करके उनका प्रसाद पाइए। वहाँ कर किंतु ऐसे नहीं, एक बात उसमें शर्त है, आप जाएंगे दोपहर के बाद में 1-2 बजे जाएंगे जब पांडव लोग खा चुके होंगे, द्रौपदी अपनी बटलोही मांझ दी हुई, और इसके बाद में आप पहुंचना। क्यों? उनको वरदान था, सूरज से कोई थाली मिली थी, जिस थाली बटलोही यदि द्रौपदी नहीं खाया है तो विश्व ब्रह्मांड को तृप्त कर सकती है, एक दो आदमी को नहीं विश्व ब्रह्मांड को तृप्त कर देगी, और यदि उसने खा करके बर्तन मार करके उल्टा औंधा दिया तो फिर एक दाना भी उसमें नहीं निकलेगा। तो वो ऐसे समय में आए 2-3 बजे और आ करके उन्होंने कहा बड़ी भूख लगी है, हम यहाँ पर भोजन करेंगे कुछ। पांडवों से कहा, महाराज युधिष्ठिर और सब पांडव उनके चरणों में गिरे, महात्मा जी विमल कुंड में स्नान कीजिए, अंधी कीजिए, पूजा उजा कर करके तब तक आपका भोजन एकदम तैयार मिलेगा। और देखा जो घर में सूखा कुछ भी नहीं है, उन्होंने द्रौपदी से कहा द्रौपदी तुम हमारी लाज बचाओ, तुम्हारी बात कृष्ण सुनते हैं, इसलिए तुम कृष्ण को पुकारो, आएंगे हमारे पुकार से नहीं आएंगे, और नहीं तो हम लोग सब मारे जाएंगे, बिना मौत के मरेंगे, या ऐसा कर देगा जटा उखाड़ देगा, आग लग जाएगी, हम लोग मर जाएंगे। उस समय में द्रौपदी जी ने एकांत कमरे में जाकर के बटलोई को सीधा कर दिया, बोली हे प्रभु आपने पांडवों की लाज रखी है, हमारी लाज रखी है, और ये पांडव लोग और हम लोग बेमौत मरेंगे यदि उनका भोजन नहीं कराया गया, इसलिए आप जल्दी से प्रसन्न होइए। इतने में देखा क्या, आंख खोली तो देखा कि मुस्कुराते हुए कृष्ण वहाँ पर खड़े हैं, पीताम्बर पहने हुए, मुरली और ये सब लिए हुए। सखी मुझे बड़ी भूख लगी है, जल्दी से कुछ खिलाओ। द्रौपदी ने कहा अरे प्रभु आपको तो इसीलिए बुलाया, आपको भूख लगी है और यहाँ पर ऋषियों को भूख लगी है, उनको यदि नहीं खिलाएंगे तो अभी संपात डाल करके जला देंगे, आप कुछ बचाइए हमको, राजा पहले हमको खिलाओ इसके बाद में हम देखेंगे। अपनी बटलोही ले आओ, तो बटलोही में प्रभु हमने मांझ करके औंधा रख दिया है। अरे ले तो आओ देखे, तुम कुछ नहीं यार तुम ले आओ। ले आए और ली आई तो उन्होंने उसको देखा ऐसे भीतर में, और देखा जी एक तीन का सहाग उसमें लगा है, इस अंगुली से, बीच वाली से नहीं और इससे नहीं, इस अंगुली से लेकर के निकाला, बड़ी मुश्किल से नख के अंदर में वो आया, लेकर के मुख में ऐसे दे दिया और एक लोटा पानी लेकर के खूब दम भर पानी पी लिया और निकाल दिया। एकदम सुन गए बेकार, देखते ही और सभी बेकार ने ले, भाई क्या हो गया, खाया तो नहीं किंतु पेट दम हो गया क्यों? तस्मिन सुस्ती जगत सुस्ती, भगवान के प्रसन्न होने से सभी जगत प्रसन्न हो जाता है, उनके भोजन करने से समस्त लोगों का भोजन हो जाता है। यदि कृष्ण प्रसन्न न है और विश्व प्रसन्न भी रहेगा तो क्या कर लेगा, और कृष्ण प्रसन्न हो और विश्व यदि विरोधी हो तो क्या कर लेगा?
और ये नंगा बताता है भला, तो ये कहता है नंगा कैसे कहता है, करम सदा तन की रखवारी जिन बालक रखोगे।
बहुत ठीक, ऐसे ही कृष्ण यदि रक्षा, इसलिए साधु संत लोग किसी की परवाह नहीं करते हैं, ये महात्मा जी किसी की परवाह नहीं करते हैं, किसी के यहाँ मांगने के लिए जाते हैं ये किसी के नहीं जाते, वैसे साधु संत लोग किसी की परवाह नहीं करते, भगवान के बल पर रहते हैं। किसी से विश्व ब्रह्मांड में निर्भय कोई है तो साधु संत है, जो भगवान का शरणागत है, और भगवान का शरणागत नहीं यदि लिया है ना तो संजय गांधी, इंदिरा और कौन थे तीनों
राजीव
गांधी ने बंदूक से मार करके खत्म कर दिया, कोई सेनाएं रख नहीं सकी।
जय श्री कृष्ण
हो गया। इसीलिए कृष्ण पर भरोसा करो और उनका भगवान करो। तो पांडवों की उन्होंने रक्षा कर दी, भीम को कहा जल्दी से बुलाओ,
जरा गदा हाथ में लेते जाना, वो गदा यहाँ पर रख करके, अरे महात्माओं जल्दी आ जाओ, भोजन तैयार है, जल्दी गरम गरम भोजन करो, पकौड़ी कचौड़ी राबड़ी मोहन भर खीर और टेढ़े तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं।
क्या
पीछे जरा नम्रता से होता है, इसलिए ये पुष्प भी उठाया जाएगा से इसी स्नेह का भाव है और अहंकार कम रहेगा तो नहीं, इसलिए जबकि गए ऋषियों ने देखा और दुर्वासा ने देखा जी गदा लेकर के बुला रहा है, यदि नहीं जाएंगे और नहीं खाएंगे उसका रसोई बिगड़ेगी तो हमें गदे से मार करके चौपट कर देगा, इसलिए वहीं से जो भगे एकदम ब्रह्मलोक पार करके कहां जाने कहां चले गए, उनका पता ही नहीं लगा इस ब्रह्मांड में ही नहीं रहे, उनको याद आई
अम्बरीश
महाराज की बात आई, इसलिए वहां से भाग खड़े। यहाँ पर एक समय की बात है, पांडव लोग जब यहाँ थे तो दुर्योधन ने देखा कि शत्रु के छाती पर दाल दलनी चाहिए, वो कैसे दलती है, मान लीजिए कोई विपत्ति में पड़ा हो शत्रु और वहां पर हम जश्न मनाए, जश्न मनाए जानते हैं, तो शत्रु देकर के अपने आप मरेगा, इसलिए ये लोग तो दुखी हैं बेचारे, वनवास में दुखी हैं। उसने क्या किया, ये समस्त अपनी सारी समाज को लेकर, बच्चाओं को लेकर के और लोग को लेकर के और हजारों लोगों को लेकर के सेनाओं को लेकर के चारों तरफ में पड़ाव डाल दिया, एक तरफ में पांडवों का था और बाकी तीन तरफ में बहुत दूर तक उनका पड़ाव था और रात भर गाना बाजा ये सब चल रहा है, इनको दिखला रहा है।